सूरत मरियम को शुरू करते हैं। बहुत ही खूबसूरत, डेलिकेट और स्टोरिकल सूरह है, और कुरान पाक की वाहद सूरत है कि जो एक औरत के नाम पे। और हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम वो वाहिद खातून है कि जिनका नाम कुरान पाक में आया। अल्लाह ताला ने औरत को रिप्रेजेंट कर दिया इसके अंदर। तो आइए देखते हैं, बड़े नरम जज्बात और रकीक सोचों के साथ इस सूरत में अल्लाह ताला हमें बहुत सारी बातें सिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काफ हा या आइन स्वाद हरूफ मुकत्तात हैं। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। जिक्रु रहमती रब्बी का अब्दहु जकरिया। काफ हा या आइन स्वाद, ये है तेरे परवरदिगार की इस मेहरबानी का जिक्र जो उसने अपने बंदे जकरिया पर की थी। इस नादा रब्बहु निदान खफिया, जब इसने अपने रब से चुपके चुपके दुआ की थी। ऐ मेरे परवरदिगार, मेरी हड्डियां कमजोर हो गईं और सर बुढ़ापे की वजह से भड़क उठा है, लेकिन मैं कभी भी तुझसे दुआ करके महरूम नहीं रहा, और मुझे अपने मरने के बाद अपने कराबत वालों का डर है। मेरी बीवी भी भांच है, बस तू मुझे अपने पास से वारिस अता फरमा जो मेरा भी वारिस हो और याकूब अलैहिस्सलाम के खानदान का भी जानशीन हो, और ऐ मेरे रब तू इसे मकबूल बंदा बना। ऐ जकरिया, हम तुझे एक बच्चे की खुशखबरी देते हैं जिसका नाम यहया है। हमने इससे पहले इसका हम नाम भी किसी को नहीं किया। जकरिया कहने लगे, मेरे रब, मेरे यहाँ लड़का कैसे होगा जबकि मेरी बीवी भांच है और मैं खुद बुढ़ापे के जोफ को पहुंच चुका हूँ। इर्शाद हुआ कि वादा इसी तरह हो चुका। तेरे रब ने फरमा दिया, ये तो मुझ पर बहुत आसान है, और तू खुद जबकि कुछ न था तो मैंने तुझे पैदा किया। कहने लगे, ऐ मेरे परवरदिगार, मेरे लिए कोई अलामत मुकर्रर फरमा दे। इर्शाद हुआ कि तेरे लिए अलामत ये है कि बावजूद अच्छा भला होने के तो 3 रातों तक किसी शख्स से बात न कर सकेगा। अब जकरिया अलैहिस्सलाम अपने हुजरे से निकलकर अपनी कौम के पास आकर इन्हें इशारा करते हैं कि तुम सुबह शाम अल्लाह की तस्बीह बयान करो। ये थी आयत नंबर 1 से 11, 1 to 11। इसका अनवान लिखिए, जकरिया ने छुपी आवाज़ में रब को पुकारा, अल्लाह ने सुन ली। हज़रत जकरिया अलैहिस्सलाम हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के पालने वाले थे। पीछे हम सूरत आले इमरान में इनका किस्सा पढ़ चुके कि जब बीबी मरियम इनकी किफ़ालत में थी, रिश्तेदारी भी थी, एक दिन आके देखा कि बीबी मरियम के पास बिन मौसम के फल पड़े हुए हैं, आउट ऑफ सीजन फल। आज के दौर में तो मुश्किल नहीं है, आपको हैरत नहीं होगी कि आप कहेंगे किसी कोल्ड स्टोरेज से आए होंगे, लेकिन ये उस दौर की बात है कि जब कोई ऐसे प्रिजर्वेटिव्स नहीं होते थे। तो जकरिया अलैहिस्सलाम ने पूछा कि बीबी मरियम ये कहाँ से आया? आज कोई और होता कहते आपको क्या पता, बड़े राज हैं, हम बड़े पहुंचे हुए हैं, अल्लाह से राबते हैं, मैं इतनी पहुंची हुई। कहा नहीं, ये हादसा मैंने दिल्ला, ये अल्लाह की तरफ से है। अब ये एक आम वाक्या था, जिंदगी में ऐसे वाक्यात हम सब के साथ भी आते हैं, लेकिन वो हमें नहीं सूझता जो जकरिया को सूझा। और वो क्या कि वो रब जो मरियम को बिन मौसम के फल दे सकता है, तो वो मुझे बुढ़ापे में औलाद नहीं दे सकता? फौरन खड़े होकर रब को पुकारने लगे, वलम्मकुम बिदुआइका रब्बी शकिया। ये है वो जुमला जो दुआओं की कबूलियत में मददगार साबित होता है। यकीन, अल्लाह मैं तुझसे मांग के कभी महरूम नहीं रहा। बूढ़े थे, 70, 80, 90 साल के करीब की उम्र थी। हम होते ना तो कहते, मरियम ज़रा मेरे लिए भी तो दुआ कर दो ना। नहीं, अल्लाह तुम्हारी ज़्यादा सुनता है, तुम बड़ी पहुंची हुई हो। नहीं, ये है वो नबियों का अल्लाह के साथ ताल्लुक जो हमारा भी होना चाहिए, कि इंसानों में उलझने की बजाय रब के पास चले जाएं। जो रब इसको दे सकता है क्या वो मुझे नहीं दे सकता? यही है वो खुदी, यही है वो अना, कि जिसको अल्लामा इकबाल ने भी कहा कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। यही है वो चीज़ जो अल्लाह के और आपके बीच के सारे वसीलों को तोड़ देती है। आप किसी सीढ़ी के जरिए से रब तक नहीं जाना चाहते, फौरन रब्बी, रब्बहू, मेरा रब, ऐ मेरे अल्लाह। यही नहीं, यही कह सकते थे, ऐ रब्बे मरियम, सामने बैठी हुई थी, ऐ मरियम के रब मेरी भी सुन ले। नहीं, जिनके रब के साथ डायरेक्ट तार जुड़े होते हैं ना, वो बीच में दूसरों को नहीं लाते। यकीन करें कि एक ईमान वाले का अल्लाह के साथ ताल्लुक जिंदा ताल्लुक होता है। ये कोई मस्जिद में जाके कायम होने वाला ताल्लुक नहीं है, ये बैतुल्लाह को देख के याद आने वाला ताल्लुक नहीं है। एक ईमान वाला जिंदगी भर अल्लाह की यादों में जीता है। वो दिन में जितनी दफा शऊर के साथ कोई काम करता है, उतनी दफा वो रब से मशवरा करता है, चाहे वो बाज़ाब्ता तौर पे इस्तखारा ना भी हो, वो चलते फिरते पूछते, अल्लाह ये कर लो, अच्छा ये ठीक है। कुछ करता है तो मुस्कुरा देता है, अल्लाह को पसंद आया होगा। गलत काम करता है तो डर जाता है, अस्तग़फ़ार अल्लाह ने देख लिया। कोई मजबूरी आती है तो फौरन उसका उजर पेश करता है। यानी डायरेक्ट डायलिंग है, आपका अपना है वो, किसी दूसरे को बीच में लाने की जरूरत नहीं। सिर्फ इस यकीन के साथ पुकारिए कि मेरा रब मेरी सुनेगा। और अल्लाह ने बूढ़े जकरिया को कहा, अच्छा जाओ फिर बेटा नहीं बल्कि उसका नाम भी देते हैं, और पीछे भी आप सुन चुके आगे भी सुनेंगे कि उनकी खूबियां सुन के तो दिल चाहता है कि बंदे की औलाद हो और उसका नाम ही यहया। अल्लाह ने नया नाम दे दिया। आज भी लोगों को बहुत क्रेज होता है ना, नया नाम होना चाहिए, चाहे उसमें अजीबो गरीब से नाम रख लें जिसका मानी कुछ ना हो। अल्लाह ने कहा इसका नाम यहया होगा, और साथ ही खुश कर दिया, देखो इसका नाम पहले कभी किसी ने रखा ही नहीं। इससे भी पता चलता है कि कोई नया नाम रखना गुनाह नहीं है, शर्त यह है कि उसका मतलब अच्छा हो और तर्जुमा अच्छा हो। और अल्लाह तआला ने खबर दी, अल्लाह तआला ये कैसे होगा, भला सोचो मांगा ही क्यों फिर अगर तुम्हें पता था नहीं मिलना। लेकिन इंसान की ये कमजोरी है ना, पहले कोई दुआ मांगता है फिर मिल जाती तो कहता है हाय ये कैसे हो गया। अच्छा हमारा हाल क्या है कि बिजली कही हो, कहते हैं हाय बिजली आ जाए, और फौरन बिजली आ जाती है, फिर कहते हैं हाय कुछ और ही मांगा होता। इतने ना शुक्रिया, हालांकि ये नहीं सोचते कि हो सकता है अभी भी दुआ की कबूलियत का वक्त मौजूद हो, कुछ और मांग लो। यानी इससे भी बड़ी कोई ना शुक्रिया, किसी का जिक्र करें और वो फौरन आ जाए तो कहते हैं हाय हमने कुछ और ही मांगा होता, उसको शर्मिंदा कर देते हैं कि तुम तो घटिया थे तुम्हें मांग लिया, हम कुछ और मांग लेते। हम अपनी दुआओं के आईने में अपने रब के साथ ताल्लुक को देख सकते हैं। कैसे मांगते हैं आप अपने रब से, क्या आपको अल्लाह से मांगने के लिए कोई लफ्ज याद करने पड़ते हैं? अच्छा वो जरा बताइए क्या लफ्ज, अच्छा कितनी दफा पढ़ूं, अच्छा एक टांग पे खड़े होकर पढ़ूं, अच्छा मुंह किबले की तरफ करूं। हमने दुआओं को वजीफे बना लिए, हम दूसरों के लफ्जों को बोलना चाहते हैं। हालांकि जिससे मोहब्बत होती है आप तो उससे तन्हाई में मिलना चाहते हैं, आप तो चाहते हैं कि उसकी और आपकी बात सुने ना। जिसको अल्लाह ताला से मोहब्बत होगी ऐसा शख्स फिर रब को ऐसी पुकारेगा, और अल्लाह ऐसे बंदे को कभी मायूस नहीं करता। आज लोग कहते हैं 40 के बाद औलाद नहीं होती, आप नबियों के हालात देखें होती 40 के बाद है। हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम की मिसाल, इनकी बीवी बुढ़िया थी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को देखें और आप देखिए कि हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला 40 साल की उम्र में अल्लाह के नबी के निकाह में आई थी, और आपके सारे बच्चे उन्हीं के बतन से हुए सिवाय एक बेटे के। तो आज की सारी साइंस जो इस पर भी बेबस हो गई कि ये क्या हुआ। लेकिन याद रखिए अनयूजुअल लोगों के साथ अनयूजुअल वाकयात होते हैं। अना इंदी अब्दी भी, हदीस कुदसी के अल्फाज हैं कि मैं अपने बंदे के गुमान के करीब हूँ। कभी मायूस ना हो, जिंदगी में अगर आपको कोई नेमत नहीं मिली मत कहे नहीं है कि मिलने वाली है, अभी नहीं है हो जाएगी। बाज़ लोग किसी नेमत से महरूम होते हैं ना तो फिर इतने गिल्टी कॉन्शियस रहते हैं, हाय बस क्या करें हाय वो। नहीं, हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम की इस दुआ से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। फिर अल्लाह तआला ने जब बेटा दिया, कहा अल्लाह ताला अच्छा कोई निशानी भी दे, यकीन नहीं आता ना बंदे को। अब उस दौर में कोई प्रेगनेंसी टेस्ट तो थे नहीं इस तरह के कि जिसको करके चेक कर लेते। अल्लाह ने एक टेस्ट दिया कि अच्छा 3 दिन तक तुम बोलना नहीं। क्यों नहीं बोलना? इसलिए कि जो जुबान अल्लाह के एहसानों के नीचे दब जाती है ना वो कम बोलती है। जिस बंदे का दिल इस बात से जुड़ जाता है ना कि मेरे रब के बड़े एहसान है, फिर वो हर वक्त अपनी ही बड़ाइयाँ नहीं मारता, वो खामोश रहता है। और जो जुबान खामोश रहती है ना अल्लाह ताला फिर उसी से खुशखबरियाँ भी जारी करवाता है। हाँ लेकिन खामोशी में ये नहीं कि चुप रहो, बल्कि क्या सुबह शाम जिक्र करो और शुक्र अदा करो। पता क्या चला कि जब नेमत मिलती है तो फिर इंसान को मजीद शुक्र करना चाहिए। आज का बंदा नहीं था कि अच्छा इतने साल बाद औलाद होने वाली, चलो बेबी शावर रखते हैं, चलो अब जाके कोई फंक्शन रखते हैं, जश्न रखते हैं। देखिए कि जब शऊर नहीं होता ना तो नेमतें मिलती हैं तो भी इंसान का रवैया नाफरमानियों का है, और ना मिले तो भी मायूसियों का है। अब बेटे को अल्लाह ताला उनके खिताब करते हैं, क्या या खुजिल किताब अभी कुवा, ए या मेरी किताब को मजबूती से थाम लो, और हमने इसे लड़कपन से ही दानाई अता फरमाई, और इसे अपने पास से शफकत और पाकीज़गी भी। वो परहेजगार शख्स था और अपने माँ बाप से नेक सलूक करने वाला था, वो सरकश और गुनाहगार न था। वो सलाम अलैहि यौम वुलिदा व यौम यमूतु व यौम यबअसु हय्या, इस पर सलाम है जब वो पैदा हुआ, जिस दिन वो मरे और जिस दिन वो जिंदा करके उठाया जाएगा। ये है आयत नंबर 12 से 15, 12 to 15। इन आयतों का उन्वान है जब अल्लाह देता है छप्पर फाड़ के देता है। अब ये तो हमारी कहानी है ना, अल्लाह ने हजरत जकरिया को ना सिर्फ बेटा दिया, कितना प्यारा बेटा दिया। जरा आप तस्वुर में लाए कि 90 से 100 साल के बीच का एक बुजुर्ग है, सारी जिंदगी औलाद के बगैर गुजर गई, अल्लाह के दीन का काम कर रहे हैं, अब दुनिया से जाने का वक्त करीब है। गम ये है कि मैं तो जब तक मेरी जान में जान थी कोशिश करता रहा लोगों को दीन की बात देने की, अब मैं जाने वाला हूँ, अब मेरे रिश्तेदार पीछे से जो बिगड़े हुए हैं इनको अल्लाह का पैगाम कौन देगा। यहाँ देखिए वारिस कौन सा मांगा था, दीन का वारिस मांगा था। क्योंकि जिस तरह इंसान अपनी औलाद पे रोब डाल सकता है या हुक्म चला सकता है उतना दूसरे पे अपना हक नहीं रखता, चाहे आपके भाई बहनों ही के बच्चे क्यों ना, आप उतनी बात नहीं कर सकते। तो इन्होंने जब मांगा तो अल्लाह ने जो बेटा दिया अब जरा अगर आप इस लफ्ज को ही देख लेना कि बेटा है, तो फौरन दिल में आने लगता है अच्छा पता नहीं कितनी देर जिएगा। जहन में आता है ना एक सवाल, तो याह्या, यह्या का मानी यह कि जीने वाला, जिंदा लंबी उम्र होगी। फिर साथ ही उसके नबी बनने की बात दी, तो नबी जब भी कोई बनता है ना तो एक आम जनरल असूल या कि 40 साल की उम्र में बनता है। तो गया कि इनको ये भी तसल्ली हो गई कि ये 40 साल तक तो जिएगा। फिर उसके बाद देखिए कि हनान होगा, अल्लाह की तरफ से उसके दिल में मोहब्बत होगी, माँ बाप से अच्छा सलूक करने वाला है। मैं सोचती हूँ कि हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम तो वाकई नहीं बोल सके होंगे, इतनी बड़ी खुशखबरी सुन के कौन है जो फिर दोगों के साथ बोले। और अल्लाह सुबहाना ताला ने उनको एक प्यारा बेटा दिया और उस पे सलामतियां कर दी 3 दिन की। आप देखिए कि हमारी जिंदगी में 3 मौके वहशत के आते हैं, हर इंसान के आते हैं, आज आए या कल आए, हर एक की जिंदगी में ये वक्त जो है वो आके रहता है। पहला वो वक्त होता है जब बंदा माँ के पेट से बाहर आता है, बच्चा जब आता है तो माँ को तकलीफ होती है तो बच्चे को भी होती है, क्योंकि वो एक सिक्योर जगह में होता है। तो वो वक्त इंसान की तकलीफ का, ये जो बच्चा रोता है असल में वो इनसिक्योरिटी की वजह से रो रहा होता है कि मुझे बाहर नहीं आना। फिर दूसरा वक्त इंसान की तकलीफ का क्या होता है जब वो इस दुनिया से जाता है। पहले माँ के पेट में थे, वहां दिल लग गया तो कहा निकलो, अब वहां से टूए हुए थे, अच्छा वाला घर मिला हुआ था, छोड़ा, थोड़ी सी परेशानी आई, इस दुनिया में आए, खैर कुछ अरसा रहे, दिल लगने लगा, अच्छा लगा, जब यहाँ दिल अभी लगने ही लगा था कहा यहाँ से भागो। मौत का वक्त इंसान के लिए मुश्किल है। फिर कब्र में जाता है इंसान, अगर अल्लाह चाहे तो कब्र अच्छी हो, वहां चैन लगता है, लेकिन फिर कब्र से निकलने का वक्त, अल्लाह तआला ने हजरत यहया से ये तीनों वक्तों पर सलामती की बात कर दी। आज हम सबका पहला वक्त तो गुजर चुका है, हम दुनिया में आए थे, हमें नहीं पता था हमारे साथ क्या हुआ, लेकिन दो वक्त आज भी हमारे सर पे खड़े हैं, हमारी मौत का वक्त और कल कब्रों से जब निकलने का वक्त होगा। तो कितने खुशकिस्मत हैं वो लोग कि जिनको अल्लाह ताला ने दुनिया में उस वक्त की सलामतियों की बात कर दी। आज हम भी अपने ईमान को सलामत करके उस वक्त की सलामतियों को पा सकते हैं। शर्त यह है कि जब हम अपनी मौत को याद रखें, अपनी कब्र को याद रखें। वो कब्र हमें दिन में कितनी बार याद रखती है, लेकिन हम सारी जिंदगी इस दुनिया ही के तकाजों में रहते हैं और इसी छोटे घर की फिक्र करते रहते हैं, ये सोचना भी गवारा नहीं करते। तो हमें तो चंद फुट के घर में जाना है। मेरा ले जिसको अपनी कब्र याद रहेगी वो कभी छोटे घर का शिकवा नहीं करेगा। आपको पता है कि असलाफ में कुछ लोग थे तो वो अपने घरों के बैक यार्ड्स में कब्रें खोद के रखते थे और रात का कुछ हिस्सा वहां गुजारते थे, तसव्वुर में लाते थे कि मैं जब कब्र में जाऊंगा तो कैसे होगा। पहले से अपने आप को यूज टू करना चाहते थे कि वहशत ना हो, और हमने करना हो तो अपने क्लोजेट में बंद कर लें अपने आप को थोड़ी देर, और बाहर से के थोड़ी देर लाइट बंद कर दो और दरवाजे को लॉक कर दो। यकीन करें कि अगर आगे को याद रखें तो ये दुनिया तो इंसान को बिल्कुल मुख्तलिफ लगती है। वस्कुर फिल किताबी मरियम, इस किताब में मरियम का भी वाकया बयान करो, जबकि वो अपने घर के लोगों से अलहदा होकर मशरिकी जानिब आई और इन लोगों की तरफ से पर्दा कर लिया, फिर हमने इनके पास अपनी रूह यानी जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा, बस वो इनके सामने पूरा आदमी बनकर जाहिर हुआ। ये कहने लगी, मैं तुझसे रहमान की पनाह मांगती हूँ, अगर तू कुछ भी अल्लाह से डरने वाला है। इसने जवाब दिया, मैं तो अल्लाह का भेजा हुआ कासित हूँ, तुझे एक पाकीजा लड़का देने आया हूँ। कहने लगी, भला मेरे यहाँ बच्चा कैसे हो सकता है, मुझे तो किसी इंसान का हाथ तक नहीं लगा और न मैं बदकार हूँ। इसने कहा, बात तो यही है, लेकिन तेरे परवरदिगार का इरशाद है कि वो मुझ पर बहुत ही आसान है, हम तो इसे लोगों के लिए एक निशानी बना देंगे और अपनी खास रहमत, ये तो एक तयशुदा बात है। फहमलत हो, बस वो हमल से हो गई और इसी वजह से वो यकसू होकर एक दूर की जगह चली गई। फिर दर्दे जह इसे एक खजूर के तने के नीचे ले आया, बोली, काश मैं इससे पहले ही मर गई होती और लोगों की याद से भूली बिसरी हो जाती। इतने में इसे नीचे से ही आवाज दी, क्या जुर्दा खातिर न हो, तेरे रब ने तेरे पाओ के तले एक चश्मा जारी कर दिया है और इस खजूर के तने को अपनी तरफ हलाओ, ये तेरे सामने तरोताजा पकी खजूरें गिरा देगा। अब चैन से खा और पी और आंखें ठंडी कर, अगर तुझे कोई इंसान नजर पड़ जाए तो कह देना कि मैंने अल्लाह रहमान के नाम का रोजा रखा है। अब ईसा अलैहिस्सलाम को लिए वे वो अपनी कौम के पास आई, बस सब कहने लगे, मरियम तूने बड़ी बुरी हरकत की, ए हारून की बहन, ना तो तेरा बाप बुरा आदमी था और ना तेरी माँ बदकार थी। मरियम ने अपने बच्चे की तरफ इशारा किया, सब कहने लगे, लो भला हम गोद के बच्चे से कैसे बातें करें। ये थी आयत नंबर 16 से 29, 16-29। इसका उन्वान लिखिए, एक औरत की सबसे बड़ी आजमाइश। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम का किस्सा है, इन्हीं के नाम पे सूरत है। किसी औरत की सबसे कीमती मता उसकी इज्जत होती है, सब कुछ चला जाए वो बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन इज्जत चली जाए तो वो ये बर्दाश्त नहीं करती। अल्लाह ताला अंबिया कराम और बड़े लोगों को बड़ी बड़ी चीज़ों से आजमाता है। बाकी अंबिया कराम को कहीं औलाद से आजमाया, कहीं माल से आजमाया, कहीं हिजरतें करवा के आजमाया, इसी तरह बीबी मरियम को अल्लाह ताला ने इज्जत की कुर्बानी से आजमाया। वो औरत जो बचपन से एक मेहराब के अंदर हो और उसकी ज़िंदगी इबादत के अंदर गुजरती हो, ऐसी औरत के पास तन्हाई में एक फरिश्ते का आना, एक मर्द की सूरत में, और उस औरत का घबरा जाना। यहाँ आप एक आयत को हाईलाइट करेंगे, आयत नंबर 18, कालत इन्नी आउसु बिर्रहमानी मिनका इन कुन ततकिया। ये जुमला आज की क्रिश्चियनिटी के ऊपर एक गहरी चोट है। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के साथ नस्बत जोड़ने वाले, किसी न किसी रंग में, कोई उसको मैरी कहे, कोई उसको मदर गॉड कहे, कोई उसको एक में से तीन या तीन में से एक कहे, लेकिन आज की क्रिश्चियनिटी को और बीबी मरियम के किरदार को आमने सामने रख लीजिए तो आपको एक बहुत बड़ा तजाद मिलेगा। वो मुआशरे के जहाँ लिविंग टुगेदर के नाम पे, जहाँ बॉय एंड गर्ल फ्रेंडशिप के नाम पे इस तरीके से रस्म व रिवाज आम हो कि ऐसे लगने लगे कि ये इनके दीन का हिस्सा है, जिससे निस्बत करते हैं वो तन्हाई में एक मर्द को आता देख कर घबरा गई। ये पैगाम मुसलमान लड़कियों के लिए तो क्या होगा, ईसाई लड़कियों के लिए भी इस पैगाम के अंदर बहुत बड़ी नसीहत है। आप जहाँ भी तस्वीरों में देखेंगे ना, क्रिश्चियंस भी जो तस्वीरें बनाते हैं इन लोगों की, तो बीबी मरियम के सर पे एक बड़ी चादर, सर से पाँव तक छुपी हुई, और उसके मुकाबले में आज की एक बिगड़ी हुई खातून रख दीजिए, कल बीबी मरियम इनको कबूल करेंगी? आज जिन लोगों का नाम ले लेके हम अपनी नस्बतें जोड़ते हैं, कल हो सकता है वो हमसे कलाम ना करें। और यहाँ फरिश्ते का इंसान के रूप में तन्हा आना, इस्लाम में भी इसकी इजाज़त नहीं कि एक औरत और एक मर्द इस तरह तन्हा हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब एक औरत और मर्द तन्हा होते हैं तो सालिसहुम शैतान, तीसरा उनके अंदर शैतान होता है। और जहाँ शैतान आएगा वो नेकी की बात तो नहीं कहेगा। एक रिवायत है, एक सहाबी थे, आपने उनको कहा कि किसी औरत के साथ तन्हा ना होना, चाहे तो ये कहे कि मैं उसको कुरान पढ़ाने जाता हूँ। यहाँ बात ज्यादा ना भी करूँ, मुझे यहाँ के माहौल का कुछ नहीं पता, लेकिन मैंने जो चीज़ देखी वो ये थी कि बाज़ दफ़ा माएँ अपनी यंग बच्चियों को ट्यूटरिंग के तौर पे, ट्यूशन के तौर पे यंग मर्दों के पास तन्हा बैठ के पढ़ने की इजाज़त देती हैं। अवॉइड करने की ज़रूरत है, बहुत खराबियाँ निकलती हैं इससे। बाज़ दफ़ा दीन के नाम पे अगर मौलवी साहब पढ़ाने आते हैं, पहली बात है कि अल्लाह ने औरतों के लिए औरतें रखी हैं, मर्दों के लिए मर्द रखे हैं, लेकिन इन चीज़ों को अब आप इग्नोर नहीं कर सकते। और वो यंग ड्राइवर्स जिनके साथ बच्चियां तन्हा रोड्स पे फिरें और वो किसी भी तरह के मामले हों, इतनी गंदी बातें सुनने को मिलती हैं कि इस पाकीज़ा मजलिस में बताने को दिल नहीं चाहता। एक ड्राइवर था, उसने मालकन की बेटी के साथ गलत फेल किया, तो जब पता चला, पूछा क्यों किया, कहने लगा इसका हुलिया मुझे मजबूर कर रहा था। यानी आप देखिए कि इतनी गंदगी है इस मौजू पे कि सारा वक्त ले लेगी, लेकिन हम कहते हैं क्या फ़र्क पड़ता है, हम कहते हैं क्या हम नेक हैं, हम पाक हैं, लेकिन बहरहाल यहाँ एक इशारा मकसूद था। दूसरी बात आप देखिए कि बीबी मरियम अलैहिस्सलाम जो थी, उन्होंने फरिश्ते की उस बात को सुन के किस तरह बर्दाश्त किया होगा, बड़े हौसले की बात है। किसी को अल्लाह के नाम पे आजमाया जाए और वो उस पर सब्र करे, उस सब्र के मुख्तलिफ मरहले हैं। शोर गुल नहीं किया, कुछ मसला नहीं किया, सब्र करके तन्हा हो गई, और अल्लाह ताला ने उनको जब उस वक्त के करीब रखा जो डिलीवरी का वक्त था, तो बैतुल लहम चली गई। कहते हैं वहाँ गोश्त बिकता था, लहम गोश्त को कहते हैं, आज भी इसको बैतलहम इंग्लिश में बोलते हैं। फिर हमने देखा कि जब उनको उस तकलीफ में अल्लाह ताला ने डाला, अब जरा सोचिए जरा इस वक्त उसे एक मासूम बच्ची, कंवारी लड़की, कि जिसके पास ना माँ है, ना सास है और ना शौहर है। एक औरत जब भी डिलीवरी के मरहलों से गुजरती है, तकलीफ के साथ साथ अंदर एक माँ बनने की खुशी होती है, अप्रिशिएट किए जाने का शौक होता है कि अभी देखना लोग कहेंगे कितना प्यारा बच्चा पैदा किया। होता वो अल्लाह के हुक्म से, लेकिन लोग माँ को खुश करने के लिए कहते हैं बड़ा प्यारा पैदा किया। कोई ऐसा मोटिव नहीं है उस औरत के पास, और गम सबसे बड़ा ये है कि जो बच्चा पैदा हो जाएगा उसको लेके कहाँ जाऊंगी। अल्लाह ने इतनी बड़ी आजमाइशों में डाला, और जहाँ कोई इंसान नहीं होता ना सहारों के लिए, तो अल्लाह कायनात को सहारा बना देता है। दरख्त के नीचे थी, उसको खिला रही थी, और जिससे वो प्रोसीजर भी आसान हुआ, और वहाँ से ताज़ा खजूरें आईं और कहा इनको खाओ। आज भी डॉक्टर्स ने इस चीज़ को प्रूव किया कि डिलीवरी के वक्त में एक औरत को अगर रुतुब यानी फ्रेश डेट्स खिलाई जाए तो उससे बहुत ही आसानी होती है। यहाँ क्रिश्चियनिटी के एक और नज़रिए के ऊपर चोट पड़ती है, और वो है 25 दिसंबर का नज़रिया। आज हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की यौमे विलादत क्रिसमस के नाम पे 25 दिसंबर को मनाते हैं। आप देखिए कि ये आयतें क्या बताती हैं कि वो मौसम गर्मी का था। सारी दुनिया में खजूर के पकने का मौसम गर्मी का होता है, और कभी भी सर्दियों में नहीं पके, और रुतब खजूरों का तस्करा है, तो इससे ही पता चलता है कि 25 दिसंबर नहीं थी गर्मियों का मौसम था। लेकिन वही बात है। और आपको ये भी मालूम होगा कि ये क्रिसमस के मनाने का कोई तसव्वुर 300-400 साल से ज्यादा पुराना नहीं है। क्रिश्चियनिटी में भी ये नहीं था, ये ऐसे ही है जैसे आज लोग हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 12 रबीउल अव्वल को यौम विलादत मिलाते हैं। ये सब चीजें एक दूसरे से ही देखी और सीखी गई है। फिर अगली चीज इससे जो पता चलती है, फकुली वशरबी, खाना और पीना। कभी इंसान को बहुत डिप्रेशन होना तो अमूमन लोग खाना पीना छोड़ देते हैं, भूख खत्म होती है। हालांकि आपको पता है कि खाने पीने से इंसान की एनर्जी भी मजबूत होती है और अल्लाह ताला गम को भी दूर कर देता है। और कर्री आईनन बेटे की तरफ इशारा था। फिर अगली बात तो बड़ी खूबसूरत है इसमें हमारे अमल की, कि जब बच्चा हो गया कहा अब करूं क्या, कहा इसको ले जाओ, लोग पूछेंगे तो क्या कहूं, कहा खामोश रहना। ये है वो नुक्ता जो बहुत सारे मकामात पे इंसान को फायदा देता है। क्या, कि जब कोई आपकी बात सुनने को तैयार ना हो, जब आपको लगे ना कि आपकी बात करना या ना करना बराबर है, तो खामोश हो जाए। हम कहते हैं खूब बोलो, बढ़ बढ़ के बताओ, सबको सुनाओ, मैं सच्ची अल्लाह की कसम मैंने नहीं किया, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, खामोश। इन्नी नजर तुले रहमानी सोमा। अगर औरतें इस सिर्फ एक हुक्म पे अमल कर लेना तो कितनी लड़ाइयाँ खत्म हो जाएं, कितने झगड़े खत्म हो जाएं, और जो आज के नाराज हैं वो कल राजी हो जाएंगे। क्योंकि आप अगर हक पे हैं और कोई आप पे इल्जाम लगाता है, कोई इतना बड़ा जिना तक का इल्जाम लगा दे हजरत मरियम पे, और कहा क्या जा रहा है, खामोश। क्योंकि खामोश रह के बंदा वो बात मनवा सकता है जो बोल के नहीं मनवा सकता। अब आगे देखते हैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का कलाम। काल इन्नी अब्दुल्ला, बच्चा बोल उठा के मैं अल्लाह का बंदा हूँ। इसने मुझे किताब अता फरमाई और मुझे अपना पैगंबर बनाया है, और इसने मुझे बाबरकत किया है। मैं जहाँ भी हूँ इसने मुझे नमाज और जकात का हुक्म दिया है, जब तक भी मैं जिंदा रहूँ। और इसने मुझे अपनी वालदा का खिदमतगार बना दिया, और मुझे सरकश और बदबख्त नहीं किया। और मुझ पर मेरी पैदाइश के दिन और मेरी मौत के दिन और जिस दिन के मैं दोबारा जिंदा खड़ा किया जाऊंगा, सलाम ही सलाम है। ये है सही वाकया ईसा इब्ने मरियम का। ये है वो हक बात जिसके बारे में लोग शक और शुबे में मुब्तला हैं। अल्लाह ताला के लिए औलाद का होना लायक नहीं, वो तो बिल्कुल पाक जात है। वो तो जब किसी काम के सर अंजाम देने का इरादा करता है तो कह देता है कुन फयकून, हो जा, और वो काम उसी वक्त हो जाता है। मेरा और तुम सब का परवरदिगार सिर्फ अल्लाह ही है, तुम सब इसी की इबादत करो, यही सीधी राह है। ये थी आयत नंबर 30 से 36, 30 to 36। इसका उन्वान है और बच्चा बोल उठा। ये एक अनयूजल वाक्या था ईसा अलैहिस्सलाम का बोलना। इनकी पैदाइश भी मुख्तलिफ थी और इनका बचपन में कलाम करना भी मुख्तलिफ था। इसी एक कलाम की वजह से आज ईसाइयत में कितने मुख्तलिफ अकीदे बन गए। हालांकि हजरत ईसा का पहला कलाम इन्नी अब्दुल्ला आज क्रिश्चियनिटी के सारे सेक्ट्स को गिराने के लिए काफी है। ईसा कह रहे हैं कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ, और लोगों ने क्या किया, इब्नुल्ला। तो लिहाजा इससे क्या पता चलता है कि जो सच्चा पैगाम है ना तौरात और इंजील का, वो आज भी कुरान पाक में मौजूद है। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के इस कलाम से हमने ये देखा कि पैदा होते ही जिस बात की उनको दावत दी गई वो क्या थी, किताब दी गई। बंदा भी है अल्लाह का और किताब दी और नबी बना दिया। बाकी अम्बिया को तो 40 साल की उम्र में नबूवत की खबर मिली, हजरत ईसा को बचपन में मिली। देखिए माँ का सब्र बच्चे के आगे आ रहा है। अल्लाह जितनी बड़ी आजमाइश में डालता है ना, फिर उसका अजर भी बहुत बड़ा देता है। फिर इससे एक और अगली चीज भी पता चली कि यहाँ ये सिर्फ माँ के साथ भलाई का जिक्र करते हैं। पीछे हजरत यहया के किस्से में माँ और बाप दोनों का तस्करा था। इससे भी पता चलता है कि बीबी मरियम यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का बाप नहीं था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बचपन में 3 बच्चों ने कलाम किया और उनमें से एक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम थे। और इसको आज क्रिश्चियंस भी मानते हैं। लेकिन क्या आप इन आयतों का तर्जमा अपने नॉन मुस्लिम फ्रेंड्स को नहीं दिखा सकते? देखिए कितना क्लियर कट है, और बड़ा खूबसूरत काम हो सकता है अगर आप यहाँ एक छोटी सी एक्टिविटी करना चाहें कि आप ईद पे ईद कार्ड जब बनाएं, कोई ऐसा चीज़ बना लीजिए जो आप उनको दे सकें, और उसके बाद फिर आप यही आयतों का तर्जमा और इसका रेफरेंस वगैरह उनको दे के तो वहाँ भेजें, खुद पढ़ेंगे, देखिए शौक आएगा। सूरत मरियम आप पूरी भी दे सकते हैं उनको किसी भी तरह CD की सूरत में, विद ट्रांसलेशन या बुक फॉर्मेट में, क्योंकि हर बंदा अपने बारे में बात सुनना पसंद करता है। और आप देखें कि जितने खूबसूरत तरीके से उनके नज़रियात को सूरत आले इमरान और सूरह मरियम में पेश किया गया, शायद उनके पास तो ये हक पहुंचे ही नहीं होगा। इससे एक बॉन्ड भी बनेगा, उनको महसूस होगा कि आपके दीन में उनकी बातें हैं, तो लिहाजा हो सकता है कि इसी तरह वो पूरे कुरान को भी समझने की नीयत कर ले और ख्वाहिश कर ले। अल्लाह ताला ने कितने वाजे तौर पर कह दिया कि ये है ईसा इब्ने मरियम जिसके बारे में लोग झगड़ा करते हैं, जिसके बारे में इख्तलाफ करते हैं। तो अल्लाह ताला हमसे कोई ऐसा काम करवा ले कि किसी के दिल के बंद दरवाजे खुल जाएं और वो हमारी तरफ से हिदायत की तरफ आ जाए। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। फिर आगे फरमाया, फख्तलफ अल अहज़ाबु मिन बैनिहिम, फिर ये फिरके आपस में इख्तलाफ करने लगे, बस काफिरों के लिए वईल है एक बड़े सख्त दिन की हाजिरी से, क्या खूब देखने सुनने वाले होंगे उस दिन जब हमारे सामने हाजिर होंगे, लेकिन आज तो ये जालिम लोग सरी गुमराही में पड़े हुए हैं। वानज़िरहुम यौमल हसरा, और इनको हसरतों वाले दिन से डरा दो जबकि कामों को अंजाम तक पहुंचा दिया जाएगा और ये लोग गफलत और बेईमानी में रह जाएंगे। इन्ना नहनु नारिसुल अर्द, खुद जमीन के और तमाम जमीन वालों के वारिस हम ही हैं और सब लोग हमारी ही तरफ लौटा कर लाए जाएंगे। ये थी आयत नंबर 37 से 40, 37 से 40। इन आयत का उनवान है हसरत वाले दिन से डरा दो। इसको हाईलाइट कर लीजिए, यौमल हसरा, क्यामत के दिन लोगों की क्या हसरतें होंगी। हमने वक्त जाया कर दिया, एक चांस था उसको हमने अवेल नहीं किया, जो ले सकते थे वो लिया नहीं, जो दे सकते थे वो दिया नहीं, हमारी कोशिशों का रुख कुछ और था, हमें तो कहीं और जाना था। अकलमंद वो है जो आज इन हसरतों को सामने लाकर अपने वक्त का सही इस्तेमाल कर ले और हसरत से बच जाए। मैं तो सोचती हूँ कि एक तो हसरत बड़ी ज्यादा होगी लोगों को कि अल्लाह हमने तेरी किताब नहीं समझी। मुझे पता है कि हम किस तरह फास्टली और भाग भाग के कर रहे हैं, एक एक आयत मुझे रोकती है लेकिन फिर मैं उस पर उतना ज्यादा वक्त नहीं लगाती। लेकिन मैं सोचती हूँ कि जो लोग इस किताब के मोती चुनने से अभी तक खुद को दूर किए हुए, और हैं क्या मजबूरियाँ, जॉब कब तक है, घर अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी कायम रहेंगे। आप जरा लिखें, एक छोटी सी एक्टिविटी आप कर सकते हैं कि अगर अभी तक शौरी तौर पे, देखिए वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान होने के नाते हमारा कुरान से ताल्लुक पहले दिन से बन जाता है, कोई भी ये नहीं कहेगा कि मैं कुरान नहीं पढ़ती, सब पढ़े हुए हैं, तजवीद से भी पढ़े होंगे, लेकिन समझे कितना है, इसको हमने कितना वक्त दिया है। कोई ऐसी चीज जो हमारे रास्ते की रुकावट है उसको लिखें और फिर चेक करें कि बैलेंस में क्या है, एक तरफ लेना है और एक तरफ छोड़ना है, लेने से क्या मिलेगा, छोड़ने से क्या मिलेगा। खुद ब खुद इंसान का दिल उसको रास्ते दिखाता है कि क्या अब मेरी जिंदगी में वो वक्त नहीं आ गया कि मैं एक दफा अल्लाह की इस किताब को सीखूं। बस लोग कहते हैं हम बूढ़े हो गए अब हम क्या करेंगे, हमारे जाने के वक्त है, तो मैं कहती हूँ शुक्र करें, कहते हुए जाएंगे कि अल्लाह हमने सीखा हुआ था, शुरू किया हुआ था, नहीं पूरा कर सका। अल्लाह को तो इस चीज की परवाह नहीं है कि इंसान कहाँ पहुंचता है, अल्लाह ताला तो सिर्फ ये देखना चाहता है कि बंदा उसके लिए करना कितना चाहता है। तो आइए बड़े दिल से अपने लिए भी और अपने उन साथियों के लिए दुआ करते हैं कि जो अभी तक इस कलामे मजीद की खूबसूरत नेमत से महरूम है, कि अल्लाह ताला मौत से पहले एक दफा इस पूरी किताब को समझने वाला बना दे। यकीन करें मैं अपने पूरे शऊर के साथ इस बात को कहती हूँ, मैंने अपनी जिंदगी में हर काम किया है, जिसको आप दुनिया का कोई काम कह लेना मैंने किया अल्हम्दुलिल्लाह। आप किसी भी चीज को पूछें, फूल बनाने तक सीखे होंगे, दुनिया के कोर्सेज भी किए, पढ़ा भी, यानी जहां तक कोई एक इंसान जा सकता है, लेकिन मैंने जो चीज डिस्कवर की है और वो क्या है कि जो खुशी और जो सेटिस्फेक्शन और जो सेचुरेशन आपको इस किताब को पढ़ने और पढ़ाने में आती है, आप इस लज्जत को दुनिया की किसी चीज के साथ कंपेयर कर ही नहीं सकते। आप अच्छा खाना भी खाते हैं, खुशी मिलती है, आप अच्छे कपड़े पहनते हैं, आप शौहर बीवी बैठ के बात करते हैं, आपको अच्छा लगता है, वो सारी लज्जतों को आप लिखें, उसके एक्सट्रीम पे, उसकी पीक पे चले जाएं और एक तरफ आप इस कुरान के पढ़ने और पढ़ाने और इसका एहसास, यकीन करें बाद झुरझुरी आने लगती है कि अल्लाह तेरी किताब। आप इस वक्त खुद अपने आप को सोचें, आपके सामने क्या है, कुरान, कुरान क्या है, बल हुआ कलाम उल्ला, अल्लाह का कलाम, अल्लाह कौन है, लिल्लाहि मा फिस समावाती, वो अल्लाह जिसका सब कुछ है। यकीन करें आपके पाँव कांपने लगेंगे कि मेरी किस्मत मेरे हाथों में, ये किताब मैं ये पढ़, इसकी जगह खुदा ना खास्ता हम कोई फिक्शन भी पढ़ सकते थे, हम कोई दुनिया की चीज भी पढ़ सकते थे, हम बेकार वक्त जाया करने का कोई मशगला भी कर सकते थे, क्या उस रब का शुक्र अदा नहीं करना कि जिसने दुनिया में हमें अपनी इस किताब से जोड़ दिया। तो अल्लाह से दुआ करते हैं कि उस दिन की हसरतों से बचाए, वो वक्त जो जिंदगी बर्फ की तरह पिघल रही है और जो जिंदगी के अंदर हमने अपनी सारी एनर्जीज इतनी डिस्ट्रेक्शंस में डाल दी, यानी इस वक्त मुझे लगता है डिस्ट्रेक्शन बहुत है, बेकार चीजों को जरूरी बना के हम पकड़ लेते हैं। सिर्फ अगर हम अपनी चीजों को चैनलाइज करते जाए ना, बेस्ट बेटर गुड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, अर्जेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, फिर एक उसके बाद अर्जेंट, फिर एक इम्पॉर्टेंट। हमारी एक पूरी सीरीज है अल्हम्दुलिल्लाह वेबसाइट पे, टाइम मैनेजमेंट पे हमने एक पूरा कोर्स किया था, गेट मोर फ्रॉम द लाइफ, उसका थीम ही ये था कि अपनी ज़िंदगी से और कुछ ले लो, ज़्यादा ले लो। इस एक जुमले ने मुझे इतना सिखाया। मेरा एक सेल फोन था तो उसकी स्क्रीन पे ये जुमला लिखा हुआ था कि गेट मोर फ्रॉम, पता नहीं उसमें उन्होंने तो किसमें से लिखा हुआ था, लेकिन मैंने उससे यही पिक किया कि जिंदगी को ले लो, बर्फ की तरह पिघल रही है। कल हसरतें होंगी, इंसान ऐसी तमाम चीजों पर हसरत करेगा जो उसने अल्लाह के जिक्र के बगैर गुजारी होंगी, और वहां तो कोई मौका नहीं मिलेगा कि जिसमें हम इस किताब के साथ फिर अपना वक्त गुजार सकें।